जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और कल हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाने वाले हैं, इसलिए दो तीन दिन से सब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु कथाएं सुन रहे हैं। और मुझे भी आज अवसर प्रदान किया कि कुछ महाप्रभु की लीला पे विस्तार करने के लिए कल इस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज ने मुख्यतः सनातन गोस्वामी पाद के साथ उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन किया था। मैं बहुत विचार कर रहा था कि किस विषय पे लिया जाए। पिछले दो साल में मैंने लास्ट ईयर जब गौर पूर्णिमा पर प्रवचन लिया था तो महाप्रभु के किस प्रकार अनलिमिटेड मर्सी और बहुत एक्सेप्शनली फॉलन पीपल को किस प्रकार से उद्धार किया उन्होंने, और पिछले साल के किस प्रकार महाप्रभु ने एक आचार्य के रूप में जगन्नाथपुरी के भक्तों के समुदाय में एक आदर्श स्थापित किया, किस प्रकार वैराग्य आश्रम के भक्तों में और विशेष और उन भक्तों और स्त्रियों के बीच में किस प्रकार छोटा हरिदास की कथा, रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब एक देवदासी के पीछे मतलब वो जब गीत गोविंद गा रही थी इन लीलाओं का, तो मैं विचार कर रहा था क्या हम सब भक्तों के लिए एक शिक्षाप्रद और प्रैक्टिकल पास टाइम हो सकते हैं। तो अंत लिया, फिर मैंने काफी विचार करने पे एक चीज एक और सुनाया, श्री चैतन्य चरितामृत जो मैं आज बोलूंगा। आई जस्ट वांट टू टेल बिफोर हैंड कि ये हो सकता है कुछ नए भक्तों को बहुत कम अपील करे या समझ में, आई ट्राई टू मेक इट एज प्रैक्टिकल, लेकिन हो सकता है चैतन्य चरितामृत के वो कैरेक्टर्स, वो चरित्र भक्तों को नहीं उतने ज्ञात हो या वो सिद्धांत उतने ज्ञात ना हो। क्योंकि जैसे कल भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज कह रहे थे कि चैतन्य चरितामृत एक PhD स्टडी है, तो अगर आदिल्ला देखेंगे चैतन्य चरितामृत का विशेषकर, तो कविराज गोस्वामी के अनुसार तो उसमें बहुत 11 अध्याय के अंदर तो बहुत सारा डिटेल्स ही है, उनका मंगलाचरण ही है बेसिकली, उसका एक्सप्लेनेशन है। और फिर महाप्रभु की नवदीप लीला और विशेषकर स्कॉलरली पास टाइम्स जो निमाई पंडित के रूप में उन्होंने की। और ये प्रश्न कई बार आता है और एक भक्त ने भी हमसे पूछा था कि क्यों महाप्रभु ने इतना स्कॉलरली विद्वत्तापूर्ण एक पंडित की पास टाइम क्यों निभाई। तो वृंदावन दास ठाकुर उसका उत्तर देते हैं, टू टेल टू द होल वर्ल्ड कि स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट्स आर यूजलेस इन परस्यूट ऑफ डिवोशनल सर्विस, रियल वेल्थ इज डिवोशनल सर्विस। कि कृष्ण भक्ति वास्तविक ही धन है और जितनी भौतिक शिक्षा है ये सब निरर्थक है वास्तविकता में। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत, क्योंकि महाप्रभु के निमाई पंडित वो जितना उनका क्वालिफिकेशन था वो सब बाद में भक्ति आने के बाद तो उन्होंने प्रदर्शित किया। तो और उसके बाद जब संकीर्तन लीला ने चालू किया लगभग 16 वर्ष की उम्र के बाद में, तो 16 से 24 नवद्वीप में जब उन्होंने किया तो मुख्यतः अपने संगियों के साथ श्रीवास आंगन में और नवद्वीप के अंदर जो है उन्होंने संकीर्तन रस का आस्वादन किया। तो इन वन सेंस ऑल्दो चैतन्यामृत का आदि, मध्यम और अंत तीनों में एक ही थीम है, वो है हरिनाम संकीर्तन। कदम कानन महाराज ने इसको बहुत ही स्पॉट एक्सप्लेन किया था डिटेल्स के अंदर अपने एक सेमिनार के अंदर, लेकिन फिर भी जस्ट वन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग्स आई वांट टू शेयर कि आदि लीला में महाप्रभु का भक्त बनना और बाद में संकीर्तन को रिलीज करना, मध्य लीला इज अबाउट जीव दया। महाप्रभु ट्रेवल्ड साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, पूरे भारत भर ट्रेवल किया और वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को एज अ प्रीचर उपदेश दिया। रामानंद राय से शिक्षा लिया ऑफकोर्स, सार्वभौम भट्टाचार्य से कन्वर्सेशन किया, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी एंड प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती के डायलॉग का मिलता आदि लीला, लेकिन बाकी वो चार जो मुख्य टीचिंग्स महाप्रभु ने किसी को दिया आउट ऑफ 5 कम इन मध्य लीला। और अंत्य लीला में जो चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार है, आचरण है, वो एक आचार्य की लीला है, विच मे बी कंसिडर्ड एटलीस्ट आधा. अंत्य लीला में 20 अध्याय है, तो लगभग 12 से 13 14 तक लगभग वैष्णव सेवा, किस प्रकार से वैष्णवों से आदान प्रदान किया जाए. अंतिम 5-6 के अंदर फिर महाप्रभु रिलीशियस द सुप्रीम एक्सटेसी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, ये कृष्ण से विरह के रूप में सबसे अधिक जो विरह आस्वादन कर रहे थे उसकी लीला आती है, जो कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है मोस्टली. और आखिरी अध्याय के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय से वो 8 शिक्षाएं शिक्षाष्टकम के रूप में प्रकट होती हैं, जो वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी का हृदय है. ये 8 शिक्षाएं बहुत ही गहरी शिक्षा, जिसको शिक्षाष्टकम बोला जाता है. तो मैंने जो थीम चूज किया वो प्रयास करूंगा मैं 2 पास्ट टाइम अगर ले पाया तो, नहीं समय हुआ तो एक ही पास्ट टाइम लेके, महाप्रभु किस प्रकार अपने अलग अलग भक्तों से वहां आदान प्रदान करते थे, और अंत लीला का ये पार्ट है कि किस प्रकार से जगन्नाथपुरी के अंदर जो भक्तों का समुदाय था और उस समुदाय के नायक थे श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहां पे कैसी कैसी स्थितियां भी आती थी और कैसे कैसे उसको डील किया जाता था. तो वन ऑफ सच थीम्स आई विल ट्राई टू टेक. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हरे कृष्ण. तो कुल चैतन्य चरितामृत में 61 अध्याय है, आदि लीला में 16, मध्य लीला में 25, अंत लीला में 20, और जिसमें से एक महत्वपूर्ण पार्षद है सनातन गोस्वामी, जिनके बारे में कल हमने थोड़ा चर्चा किया. उसमें लगभग 7 अध्याय सनातन गोस्वामी के साथ में डिटेल में आते हैं चर्चाएं. और अंत्य लीला के अंदर जिन भक्तों ने चैतन्य में थोड़ा पढ़ा है, तो बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं होती है वहां पे, और वो सब प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जो वैष्णव समुदाय में हमेशा आते हैं, और कलयुग में खासकर. तो महाप्रभु ने प्रैक्टिकल जीवन में बताया कि हमको एक आचार्य के रूप में, तो यदि आप वहां पे कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, महाप्रभु सिखा रहे कैसे उन व्यावहारिक स्थितियों को डील किया जाए. तो हम देखते हैं कुछ भक्तों का गुणगान है और कुछ भक्तों की मिस्टेक का, कुछ भक्तों की गलतियां का. आप में से कोई बचाए तो आगे आ सकते हैं, क्योंकि और भक्त पीछे आ रहे हैं. तो जो है वहां पे हम देखते हैं भगवान आचार्य एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, और वो ग्वाल बाल थे पहले और गृहस्थ आश्रम में थे. हालांकि बहुत ही विरक्त थे, तो उनका भाई आता जगन्नाथपुरी के अंदर जो कि मायावादी था. तो महाप्रभु से मिलते हैं, और फिर बाद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और भगवान आचार्य के अंदर बहुत सुंदर मित्रता थी, तो वो उनको डांट लगाते हैं, तुम्हारा भाई मायावादी है, मायावादी भाष्य मत सुनिए. और भगवान आचार्य को बाद में भी एक और बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी डांट लगाएंगे, जब एक उनके गांव से एक कवि आता है, बंगाल से एक कवि और आता है तभी भी। फिर ऐसे जगदानंद पंडित को भी डांट पड़ता है चैतन्य महाप्रभु से कि सनातन गोस्वामी को तुम शिक्षा क्यों दे रहे हो, सनातन गोस्वामी वरिष्ठ हैं, आप उनसे जूनियर हैं, आप कौन होते हैं शिक्षा देने वाले उन्हें। छोटा हरिदास ने गलती किया जिसमें तो नमो महावदा न्याय, सबको प्रेम प्रदान करने वाले चैतन्य महापुरुष रिजिड हो गए, बोले आज से हरिदास को मेरे दर्शन के लिए आने मत दीजिएगा। कितना कितना भक्तों ने रिक्वेस्ट किया भटिवस वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम। उसके बाद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने डांट लगाया भगवान आचार्य को। वल्लभ भट्ट जिनको बाद में वल्लभाचार्य के रूप में जानते हैं, उनका चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी करेक्ट किया। फिर महाप्रभु को किसी ने करेक्ट क्रिटिसाइज किया, वो थे रामचंद्रपुरी। उसके बाद में गोपीनाथ पटनायक, ये एक भक्त थे, भवानंद राय के पांच पुत्र थे, रामानंद राय के भाई थे, ये सब महाप्रभु को शरणागत थे। पांच में से एक भाई फुल टाइम भवानंद राय ने दे दिया था वाणीनाथ राय को महाप्रभु की सेवा के लिए। तो ये गोपीनाथ पटनायक गृहस्थ आश्रम में थे, इनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और वहां पे महाप्रभु का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टैंड और इंटरनल कृपा दोनों देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जगदानंद पंडित से प्रेम विवर्त, उनको करेक्ट किया जाता दोबारा। फिर नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन की छाती में लाट लगाते हैं। तो ये कुछ अपेरेंटली वैष्णव समुदाय के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स अंत लीला में सारे दिखाई पड़ती है ना, कि कैसे वैष्णवों के बीच में भी गलत फहमियां हो सकती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है गलत फहमी कैसे हुई है, महत्वपूर्ण चीज ये है कैसे उनको सुलझाया गया है, वो महत्वपूर्ण चीज है। तो अंत लीला के अंदर ये हम चीज सीख सकते हैं। खाली अंत लीला भी बोलना शुरू किया तो अगला गौर पूर्णिमा भी आ जाएगा, लेकिन आई टेक वन स्मॉल पास्ट टाइम। ये है एक ब्रह्मचारी थे जगन्नाथपुरी में जिनका नाम था दामोदर पंडित। ये महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद थे, बहुत ही प्रिय महाप्रभु को थे। ये तीसरे अध्याय अंत लीला के अंदर ये कथा आती है दामोदर पंडित की। तो एक बार ये क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी के अंदर एक बहुत सुंदर बालक था, युवक था, बड़ा सुशील, बहुत ही सभ्य, और वो ब्राह्मण का पुत्र था, रोज चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आता था, बहुत सुंदर था। तो महाप्रभु को उसको देख के भी बड़ा प्रेम आता था, और वो ब्राह्मण पुत्र था तो महाप्रभु को नमस्कार करता था और बड़ा खुल के फ्रैंकली टॉक करता था महाप्रभु के साथ में। तो और महाप्रभु भी उससे बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही इंटीमेट एसोसिएट करते थे। लेकिन इस ब्राह्मण पुत्र के साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, उनके पिताजी नहीं थे। तो ये दामोदर पंडित जो थे इनको ये देख देख के बहुत असहनीय होता था, इनटॉलरेबल, कि ये लड़का ऐसे क्यों महाप्रभु के पास आता है। तो कई बार टोकते भी थे, उसको समझाते थे भाई तुम क्यों आते हो, बार बार अपने घर में रहो, यहाँ क्यों आते हो, मत नहीं आना चाहिए। लेकिन आप सोचिए जब एक छोटे भक्त का क्या चलेगा, अगर जब एक हेड अगर मान लीजिए कोई महाराज को मिलने आ रहा है और गेट पे आप कितना भी रोकेंगे और महाराज बुला रहे उसको, सीनियर डिवोटी बुला रहे, तो आप ही क्या चलेगा, अरे बाजू हटना वो बुला रहा है मेरे को, है कि नहीं। तो दामोदर पंडित के साथ दामोदर पंडित को भी ऐसे होता था, लड़का आता था बोले मैं क्या करूं महाप्रभु बुला रहे, और उस बच्चे के लिए भी महाप्रभु के बिना रहना असहनीय था। और कविराज गोस्वामी भी कह रहे हैं महाप्रभु जितने प्रेम से व्यवहार करते थे, बच्चों का स्वभाव होता है प्रेम से थोड़ा बात करेगा उसके पास आ ही जाएंगे, है कि नहीं, दैट इज बट नेचुरल। तो वो आता था रोज मिलने के लिए, लेकिन दामोदर पंडित जो देख के बहुत दुख लगता था, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि बालक तो उनकी बात मानता नहीं था, उन चलो छोटा बच्चा है इसकी बात को जो है हम इसको रोक देते हैं, नहीं आएगा। लेकिन वो सुनता सुना सुना कर देता था। तो एक दिन वो महाप्रभु के पास आया वो लड़का, महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उससे सब बातचीत किया, बड़े स्नेह के साथ मिले उसके साथ में। जब बालक चला गया तो दामोदर पंडित से सहा नहीं किया, अब बहुत हो गया, वो महाप्रभु के पास आए और फिर क्या कहते हैं, अन्य उपदेश पंडित कहे गोसाई रठाए, गोसाई गोसाई ए जानी मुँह गोसाई। वो कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा इंप्यूडेंटली बोला, सारे लोग आपको महान शिक्षक बोलते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे किस तरह के आप शिक्षक हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट महाप्रभु वो बोल रहे हैं कि सब तो आपको टीचर के रूप में जानते हैं, आचार्य बोलते दंडवत करते हैं, अभी पता लगेगा आप कितने महान आचार्य हैं। आप गोसाई के नाम से, आचार्य के नाम से विख्यात हैं, किंतु अब आपके गुण तथा यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त होगी, अर्थात जगन्नाथपुरी में। आपके पद को कैसा धक्का लगेगा? ऐसा उन्होंने बोला तो एक बार महाप्रभु को थोड़ा, तो महाप्रभु समझ तो गए। देवा दिलेशन जी भी न्यू के दामोदर पंडित बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, लेकिन महाप्रभु ने जब ऐसी बात सुनी, ऐसी घटना सुनी, तो बोला तुम ये क्या उपटांग बातें कर रहे हो, है कि नहीं? सुनी प्रभु कहे क्या कह दामोदर, दामोदर कहे तुम स्वतंत्र ईश्वर। तो बोले दामोदर पंडित, बोले आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप सभी आलोचनाओं के परे हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, सारा संसार तो बातूनी है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके जमान को तो आप नहीं सिल सकते ना कि आप उनको टांका लगा दें, आप उन्हें कैसे रोक सकते हो। और फिर वो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, हे प्रभु आप विद्वान शिक्षक हैं, आप यह विचार क्यों नहीं करते कि यह बालक एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है, इसके पिताजी नहीं है तो माता जी एक विधवा है, आप इसके प्रति इतने स्नेहिल क्यों है? हालांकि इसकी जो माता है ब्राह्मणी है, पूर्णतया तपस्वी तथा सती है, किंतु एक सहज दोष है उसके अंदर, क्या है? वो एक सुंदर युवती है, और तुम ही परम युवा परम सुंदर लोकेर काणा काणी बाते देह अवसर, और आप एक आकर्षक सुंदर तरुण व्यक्ति हैं, चाहे संन्यास आश्रम में हैं, लेकिन आप एक तरुण व्यक्ति हैं, इसे निश्चित रूप से लोग कानाफूसी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, दुनिया की माइंड सेट ऑफ द पीपल। आप ऐसा उन्हें अवसर क्यों प्रदान कर रहे हैं, क्यों आप मौका दे रहे हैं लोगों को इस प्रकार से पिन पॉइंट करने के लिए किसी प्रकार से? तो ये कहकर दामोदर पंडित मौन हो गए। और तो प्रभुपाद यह तात्पर्य लिख रहे हैं, इतने श्लोक में तात्पर्य नहीं था, यहां पे एक तात्पर्य लिख रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का सरल तथा पक्का भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते सहन नहीं सकते थे। उनको ये लगा लोग कैसे बोलेंगे महाप्रभु की, तो मैं सुन नहीं सकता ये बात कि लोग महाप्रभु के बारे में गलत बोलेंगे। तो ये उनका प्रेम था दामोदर पंडित का, किंतु दुर्भाग्यवश वे खुद ही चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे। सो ही डिड नॉट वांटेड पीपल टू क्रिटिसाइज महाप्रभु, बट ही हिमसेल्फ वाज क्रिटिसाइजिंग चैतन्य महाप्रभु लाइक दैट। तो महाप्रभु ये समझ गए कि एक्चुअली दामोदर पंडित की गलती नहीं है, ये क्या है, उनकी सरलता है, यू नो ही वेरी सिंपल, जिसके कारण वह उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहा है। और प्रभुपाद अंत में एक लाइन लिख रहे हैं, फिर भी भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं होता, भक्त को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो यह कहकर दामोदर पंडित मौन हो गए, चैतन्य महाप्रभु भी मौन हो गए, प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और फिर विचार करने लगे। He did not respond, विचार कर रहे थे क्या? इहार कहिए शुद्ध प्रेम रतरंग दामोदर सममोर नहीं अंतरंग। इनकी जो धृष्टता है ये, या कह लीजिए बदतमीजी है या इंप्यूडेंस है, एक्चुअली मेरे प्रति शुद्ध प्रेम का संकेत है। दामोदर पंडित जैसा मेरा कोई अन्य घनिष्ठ मित्र नहीं है, दामोदर पंडित जैसा एक्चुअली विद माई वेल विशर। तो महाप्रभु अंडरस्टूड इट वेरी अप्रोप्रिएटली, और ये ऐसा सोच रहे थे महाप्रभु कि क्या किया जाए, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। विचार करके महाप्रभु अपने न्यू ड्यूटीज में चले गए, और उसके बाद में उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया अगले दिन। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड दामोदर पंडित और उनको बुलाया, प्रभु कहे दामोदर चलह नदिया माता र समीप तुम्हें रह तहाय। बोले एक काम करो, अच्छा होगा कि तुम नदिया चले जाओ, नवदीप चले जाओ और मेरी माता के साथ रहो, मैं तुम्हारे अतिरिक्त उसका कोई दूसरा रक्षक नहीं देख रहा हूं, क्योंकि तुम इतने सतर्क रहते हो कि तुम मुझे भी सावधान कर सकते हो, है कि नहीं? यू आर सो अलर्ट, तो बहुत अच्छा है, तुम मेरी माता के साथ रहोगे तो यू आर वेरी गुड प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और फिर महाप्रभु का गुणगान करते हैं, तुम मेरे संगियों में सर्वाधिक निष्पक्ष हो, यू नॉट अ यस मैन, है ना? यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। अर्थात क्या है कि निष्पक्ष मतलब, एक बार एक व्यक्ति का नौकर था मालिक का, तो मालिक ने बोला देखो उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, बोला बैंगन जैसी कोई सब्जी नहीं है, बैंगन तो इतना, तो उसने 50 गुण बता दिए बैंगन के, बोला देखो सफेद रंग का बैंगन आता है, छोटा बैंगन आता है, मोटा बैंगन आता है, इसका पकौड़ा बना सकते हो, इसको फ्राई कर सकते हो, इसका भरता बना सकते हो। थोड़े दिन बाद फिर बैंगन सब्जी बनी, उसने बोला बैंगन मतलब बेगुण, इसमें कोई गुण ही नहीं होता। तो नौकर ने 50 गलतियां निकाल दी उसके अंदर, बोला कि भाई बैंगन एकदम बेकार सब्जी है, ये तो झाड़ में उगती है और जानवर भी नहीं खाते इसको, तो ऐसे करके 50 गुण उसके बैंगन के अवगुण निकाल दिए। कुछ दिनों बाद आलू की सब्जी बनी, तो मालिक ने आलू में गुण बताया, तो उसने बोला देखो आलू तो सब सब्जियों में, जहां कम वहां आलू है कि नहीं, उधर आलू डाल दो, 50 गुण आलू के बता दिए उन्होंने। कुछ दिन बाद फिर आलू की सब्जी बनी, तो बोले आलू जैसी कुछ बेकार चीज ही नहीं। बोले हाँ कीचड़ में उगता है, मिट्टी वाला है, ये है वो है, जमीन के अंदर उगता है। 50 अवगुण निकाल दिए। तो नौकर बोला, मालिक बोला, बोले तू कैसे आदमी हो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मैं बंगन की निंदा करता हूं तो तुम निंदा करते हो, मैं प्रशंसा करता हूं तो प्रशंसा करते हो, मैं आलू के गुण करता हूं तुम 50 गुण बताते हो, मैं आलू के अवगुण तो 50 अवगुण बताते हो। तो बोले मालिक साहब मैं आपका नौकर हूं, ना आलू का दास हूं ना बैंगन का दास हूं, मैं आपका दास हूं, है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता। अगर वो उसके पास फेवरेटिज्म है, इसको अच्छा है इसको बुरा है, देन वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो राग और द्वेष की पत्ति करेगा। मेरे को अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। दैट्स व्हाट इट हैपेंस। दामोदर पंडित उनको चैतन्य महाप्रभु का इंटेंस लव था, और लव का एक है कि मिशनरी स्पिरिट के अंदर मिशन को प्रेम करना और मिशनरी को प्रेम करना दोनों को। तो यहाँ पे देख रहे थे लोग महाप्रभु की निंदा करेंगे और इससे महाप्रभु का ही मिशन खराब होगा, जो का मिशन लोगों का उद्धार करने के लिए। जब कोई चैतन्य महाप्रभु के पीछे ही कानाफूसी करेगा तो लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो महाप्रभु इसलिए ये गुणगान कर रहे हैं उनका एक्चुअली, कि आप निष्पक्ष हो, बोलो यू आर इम्पार्शियल, बोलो। तो इसीलिए आप धर्म की रक्षा कर सकते हो। ऐसा नहीं है ये मेरा बंदा है तो इसको नियम भी तोड़ेगा तो कोई बात नहीं, और दूसरा नहीं तोड़ेगा तो दूसरा तोड़ेगा तो उसको सजा देनी है, इसको बचाना है। नॉट इज वेरी इम्पार्शियल। तो हर किसी को ऐसा बोल देते थे। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता वह तुम कर सकते हो, निस्संदेह तुम मुझे भी दंडित कर सकते हो, तो अन्यों की तो बात ही जाने दो, है कि नहीं। कि तुम कोई भी गलती करेगा तो उसे करेक्ट कर दोगे तुरंत, है कि नहीं। जब मुझे कर सकते हो तो फिर बाकी सबकी बात ही क्या है, है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए यह होगी, तुम मेरी माता के चरण कमलों के शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा, कोई भी 1% भी डेविएशन नहीं हो सकता, बोलो दामोदर पंडित के सामने। नहीं तो अभी बताते हैं आगे क्या हुआ, महाप्रभु बता रहे क्या होने वाला अगर ऐसा कोई करता है। तो बोला आप नदिया चले जाओ, बीच बीच में तुम मुझे यहां देखने आ सकते हो, और शीघ्र ही वहां से फिर जा सकते हो। आप यू कम टू मीट मी जगन्नाथपुरी, लेकिन थोड़े समय रह के जल्दी चले जाना वापस। जय श्री श्री राधा नारायण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा माई की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौरीनाथ कृष्ण भगवान की जय। और फिर जो है तुम माता से मेरा नमस्कार करना, मेरे सुख के विषय में कहना, तुम्हें सुख पहुंचाना। और फिर महाप्रभु बहुत ही गोपनीय लीला भी उन्हें बताते हैं, तुम जाके शची माता को संदेश देना। लगभग 30 प्यार के अंदर ये लीला आएगी जो महाप्रभु ने बताएंगे शची माता से, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लीला। तो इस प्रकार से महाप्रभु दामोदर पंडित से डील करते हैं, और ऐसा बताते हैं कि दामोदर पंडित बाद में जब यह खत्म हो जाएगा, दामोदर पंडित एज इट इज चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और नवदीप चले जाते हैं। जब वो नवदीप जाते हैं तो महाप्रभु ने सब भक्तों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया होता है, प्रसाद दिया होता है सबको देते हैं, अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर अन्य सभी भक्तों को, और वहां पर रहते हैं। और ऐसा बताया है कि दामोदर पंडित उसके बाद में जिस भी भक्त को कुछ भी गलती करते देखते थे मौखिक रूप से दंड देते थे उन्हें तुरंत, जो उनको तो सब भक्त उनसे बड़े भयभीत रहते थे कि अरे अब इधर कुछ भी गलती हुआ तो खैर नहीं है बेसिकली, है कि नहीं। लेकिन इससे हुआ क्या, महाप्रभु न्यू दिस, इससे कोई भी भक्त बिल्कुल टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन रहते थे वहां पर, कभी भी जो है कोई भी भक्त ढीला नहीं पड़ सकता था ऐसे। तो महाप्रभु ने जो है इस प्रकार से नवदीप भेज के एक जो है प्रकार से यूटिलाइज किया। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं, हालांकि छोटी सी लीला है और भक्तों को ऐसा सुनकर थोड़ा दुख भी लगेगा कि महाप्रभु का ये पार्षद खुद ही वो डांट रहा है, वेरी मतलब आउट ऑफ द डिफरेंट लीला कि ऐसा लीला, तो पढ़ के बहुत अजीब भी लग सकता है। और कविराज गोस्वामी मेंटेन भी इसको मेंशन भी कर रहे हैं, नहीं भी करते थे मान लीजिए, लेकिन यह मेंशन की गई है। और ऐसे जैसे मैंने कितने सारी लीलाओं का मेंशन भी किया, क्योंकि ये महाप्रभु आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने उदाहरण से भी सिखा रहे हैं कि कैसे एक भक्त का लीडर होना चाहिए। तो इस शिक्षा हम कुछ 3-4-5 शिक्षा हमें मिल सकती है। पहली तो दामोदर पंडित के चरित्र से, फ्रॉम अ पॉजिटिव साइड व्हाट वी शुड बी डूइंग, ही हैड प्योर लव फॉर चैतन्य महाप्रभु, अनअडल्टरेटेड शुद्ध प्रेम था उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति और चैतन्य महाप्रभु के मिशन के प्रति। तो इसीलिए वो सहन नहीं कर पा रहे थे ये सोच सोच के कि कैसे लोग उनकी निंदा करेंगे, और जब लोग उनकी निंदा करेंगे तो उनका मिशन फेल हो जाएगा, है कि नहीं? स्वाभाविक रूप से तो वो निंदा सुन भी नहीं सकते थे और ना उस मिशन को फेल करते देख सकते थे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या था उनके साथ में, ही डिड नॉट एक्ट वेरी मेच्योरली इन टर्म्स ऑफ गिविंग दैट मैसेज टू चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को यही संदेश कैसे पहुंचाना है, अपना कंसर्न कैसे व्यक्त करना है, दैट वॉज नॉट डन मेच्योरली। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एज अ लीडर, महाप्रभु इज मोस्ट मेच्योर, उन्होंने जब दामोदर पंडित ने ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया, ऐसा कटु शब्द भी बोले अपेरेंटली एक्सटर्नली, महाप्रभु डिड नॉट रिएक्ट, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया, ही वेटेड। दूसरा, द सेकेंड थिंग इज ही डिड नॉट मिसअंडरस्टैंड दामोदर पंडित, उनको गलत फहमी नहीं बोला, ये दामोदर पंडित तो मेरे से ईर्ष्यालु है, या महापुर डिड नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही कंटेक्स्ट में दामोदर पंडित को इवैल्यूएट किया कि एक्चुअली इसकी भावना क्या है। और तीसरा क्या किया महाप्रभु ने, उसके प्रति अप्रोप्रिएट एक्शन लिया, दूर भेज दिया, सेवा में लगाए रखा लेकिन एट अ डिस्टेंस, क्योंकि मटीरियल फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, स्पिरिचुअल फेमिलियरिटी ब्रीड्स लव। जब घनिष्ठता हो जाती है तो धृष्टता भी बढ़ जाती है, अगर भौतिक रूप से घनिष्ठता होती है तो धृष्टता बढ़ जाती है, उसके अंदर व्यक्ति का दोष ज्यादा दिखाई पड़ने पड़ते हैं। तो ये तीन शिक्षा फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु साइड और दो शिक्षा हम दामोदर पंडित साइड से सीख सकते हैं। पहला, दामोदर पंडित की ओर से प्योर लव फॉर चैतन्य महाप्रभु। जब हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक सेंटर पॉइंट होना बहुत जरूरी है सब भक्तों के लिए, जो सब भक्तों के जीवन के अंदर केंद्र बिंदु हो, और वो एक उनके प्रति, और वो केंद्र बिंदु निश्चित रूप से इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकते और होने भी नहीं चाहिए, ये तो अलग अलग सेंटर बन जाएंगे। हर भक्त के लिए वो श्रील प्रभुपाद के शिक्षा, उनके जीवन चरित्र और उनके द्वारा दी गई सब टीचिंग्स, ये सेंटर पॉइंट होने चाहिए, और यही अनेकों अनेकों मतभेदों को रिकनसाइल कर सकता है। तो कैसे हम लोग प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं, एक तो है श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम और दूसरा उनके मिशन के प्रति प्रेम, अर्थात इस्कॉन संस्था के प्रति प्रेम, इस परिवार के प्रति प्रेम। और परिवार मतलब कुछ तो झगड़ा होता रहेगा, कुछ तो नोकझोंक होती रहेगी, कुछ तो मतभेद होते रहेंगे, लेकिन दही प्रभुपाद कहते थे योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट, कितना आप सहयोग करके इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं उससे ही पता लगेगा हम प्रभुपाद से कितना प्रेम करते हैं। तो कितना हम कृष्ण भावना भावित रूप से मतभेदों को सहन कर सकते हैं, उतना अधिक प्रेम हमारा श्रील प्रभुपाद के प्रति जागृत होगा, और उसमें बहुत सारा टेस्ट होने वाला है, अपना सहिष्णुता का टेस्ट होगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा, महाप्रभु को मिल रहा है तो फिर हम किस खेत की मूली है कि नहीं? तो निंदा चुगली तो हमको सहन करना ही पड़ेगा, जितना अधिक सहन शक्ति को हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे, और वो टेस्ट होगी इन सिचुएशंस के अंदर, यू नो। और जब एक प्रारंभिक भक्त होते हैं तो वो उनका भी लीडर के प्रति एक प्रेम होता है, या वरिष्ठ भक्तों के प्रति प्रेम होता है, और वो प्रेम कैसा होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है मुझसे कितना प्रेम करते हैं, उस रेसिप्रोकल भावना में प्रेम होता है। हाँ, प्रभु जी बड़ा ध्यान रखते हैं, प्रभु जी मेरे से बड़ा हंस के बातचीत करते हैं, प्रभु जी मेरे से जो है प्रसाद देते हैं, तो लगता है ये असली प्रेम है, प्रभु जी कितने अच्छे हैं, है कि नहीं? लेकिन मेच्योरिटी ऑफ द प्रेम इज हाउ मच माई सुपीरियर लव्स कृष्णा एंड गुरु परंपरा। मेच्योरिटी ये नहीं होती मुझसे कितना प्रेम करता है, मेच्योरिटी का वजह नहीं होता ये कृष्ण और गुरु परंपरा से कितना प्रेम करता है, ये देखना चाहिए शिष्य को या कनिष्ठ को कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, कैसे मैं उनके प्रति असिस्ट कर सकता हूं। यहां पे दामोदर पंडित भी जो है उनको महाप्रभु का आचरण ठीक नहीं लग रहा है, तो इन अ सेंस इज फाइंडिंग फॉल्ट, और लीडर कैन मेक मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि लीडर डिवाइन है, यहां महाप्रभु एज अ लीडर के पोजीशन के अंदर जब वो गलती कर सक मतलब उनके चरित्र में गलती देख सकता है, और वो भी उनका सबसे निकटतम पार्षद प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, इतने क्लोज के संगी हैं, और उसके बाद उनको ऐसा बोल भी सकते हैं, तो पूरा तो ये फीडबैक नहीं था, ये तो पूरा पर्सनल अटैक था, नॉट जस्ट अ फीडबैक, फीडबैक होता तो पूछ सकते थे बोलो तो वो सेकंड पॉइंट है हाउ वी कैन डू एज एन एटिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उनका प्रेम बहुत था महाप्रभु के प्रति। तो ऐसे ही हमारी मेच्योरिटी का लक्षण तब देखा जाएगा जब हम अपने वरिष्ठों का या अपने भक्त ये ना देखें कि हमारे से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से देखें कि वो प्रभुपाद गुरु परंपरा से कितना प्रेम करते हैं। बिकॉज सेंटर हैज टू चेंज फ्रॉम आई टू कृष्णा, यू नो लाइक दैट शुड बी सीन। अगर ये फोकस है ना तो सहन करना भी आसान होगा, परम दृष्टा नहीं होता। अदरवाइज क्या होगा, मेरे से ऐसा बोल दिया, मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये गलत है, ये सही नहीं है। बट यू सी, ठीक है अगर एक्सटर्नल गलती भी किया है, उनकी भावना है प्रभु के प्रति प्रेम का, और मैं कैसे प्रेम व्यक्त कर सकता हूं, बाय कोऑपरेशन एंड बाय टॉलरेंस लाइक दैट। एंड स्टिल सेकंड पॉइंट कम्स इज, अगर गलती दिखे तब क्या करना है? तो क्या साइलेंट रहना सहनशीलता है? नहीं, साइलेंट रहना भी अंदर घुट रहे हैं, अंदर श्रद्धा खराब हो रही है तो क्या होगा, सामने साइलेंट रहेंगे पीछे जाके बहुत कुछ बोलेंगे, है कि नहीं? या फिर गलत समय पे बोलेंगे या गलत तरीके से बोलेंगे, गलत तरीके से उसको व्यक्त करेंगे। तो मेच्योरिटी मीन्स इवन इफ वी फाइंड कि कुछ ना पॉलिसी, कुछ तो प्रैक्टिस, कुछ तो आचरण वो लोगों के अंदर डाउट प्रोड्यूस कर सकता है, यू नो इट मे डिससेटिस्फाई पीपल, इससे पूरे मिशन को नुकसान होगा। तो मेच्योरिटी यही है कि उसको व्यक्त किया जाए। सहनशीलता का मतलब जितना हमने वरिष्ठ भक्त सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि चुप करके घुटके पीते रहो या देखते रहो जो हो रहा है होने दो कोई बात नहीं भगवान सब करने वाले हैं, देयर इज नॉट मेच्योरिटी सर्टेनली फॉर श्योर। एक मेच्योर परिपक्व भक्त को, इसलिए मैं शुरू में कह रहा था द क्लास इज मोर फॉर द ओल्डर डिवोटीज नॉट फॉर द न्यू कमर्स, उनको है देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट शुड बी वेल क्लैरिफाइड बट जस्ट नॉट क्लैरिफाइड, वी शुड बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। और समाधान के सॉल्व करने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से, यही दामोदर पंडित महाप्रभु से या फिर महाप्रभु के ऑन के अन्य संगी से जो महाप्रभु के समवर्गीय थे या उनसे वरिष्ठ थे उनसे डिस्कस कर सकते थे कि महाप्रभु के शासन को कैसे देखा जाए। क्योंकि अधिकांश देखते हैं चैतन्य चरितामृत के कुछ कुछ जहां महापुरुष स्ट्रिक्ट होते थे तो चार पांच पार्षदों को बोला जाता था आप जाइए, तो जब चार महीने होते जब नित्यानंद प्रभु को बोला था सबसे सामने आप खड़े हो, तो और या फिर अद्वैत आचार्य, और ये बंगाल से जब आते थे चार महीने की बात है, लेकिन बाकी आठ महीने में किसी को आगे प्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी जो कि उनके गुरु के गुरु भाई हैं, और या फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, वो गृहस्थ थे और वरिष्ठ थे उम्र के अंदर भी, और या फिर रामानंद राय, ये उनके क्लोजेस्ट एसोसिएट्स थे, या फाइनली स्वरूप दामोदर। तो ये पार्षद मुख्य होते थे जो फ्रंट में जाके महाप्रभु के साथ डीलिंग करते थे बेसिकली। तो वो ऐसा कर सकते थे, दामोदर पंडित चाहे तो उनके पास जाके अपना हृदय रिवील कर सकते थे, देखो ऐसा मैं फील कर रहा हूँ क्या करना चाहिए, यू नो आई एम हैविंग समथिंग, मेरा ये कंसर्न है, मेरा महाप्रभु श्रद्धा नहीं डाउट हो रहा है लेकिन मेरा कंसर्न है कि लोग महाप्रभु निंदा करेंगे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, बट मे बी ही कुड हैव डन दैट। तो ऐसे करते तो शायद अच्छा रहता, अगर ऐसा करते तो शायद ये लीला चैतन्य में होती भी नहीं, मे बी यू नो लाइक दैट। तो हमारे दृष्टिकोण में के अंदर भी इस प्रकार से सदाचार का पालन करते हुए हम अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। नहीं तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो हम देखते हैं इस कॉम में तो सब ऐसे ही हैं, यहां तो ऐसा ही होता है बस, या तो यहाँ पे जिसके पास में कंट्रोल है, जिसके पास गद्दी है कुर्सी है उसी की चलती है, बाकी सब तो यहाँ पे चल रहे, यू नो दिस काइंड ऑफ र्यूमर्स एंड यू फाइंड आउट, क्यों मेरी नहीं चली तो जिसकी चल रही है उसको नीचे खींच लो, इट्स नॉट लव इट्स ईर्ष्या, इट्स मोटिवेटेड बाय एनवी बेसिकली लाइक दैट। सो ये शरणागति का लक्षण नहीं है, ये तो अपना ही अनर्थ है जिसको हम किसी ना किसी प्रकार से पोर्ट्रे कर देते हैं सरेंडर टू प्रभु का, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट लाइक दैट, रादर वी शुड बी वेरी हम्बल एंड मेच्योर एंड प्रे टू श्रील प्रभुपाद रादर कि हमको विजडम दे कैसे अपोजिंग फैक्टर को रिकंसाइल कर सके। इसके बाद में जब रिकंसिल, जब ऐसे कोई लीडर के प्रति लीड के प्रति किसी की गलत फहमी हो हाउ वी शुड एक्ट, तो जब भी कोई ऐसा फीडबैक हो डोंट रिएक्ट इमीडिएटली लाइक दैट्स व्हाट महाप्रभु डिड, साइलेंट रहे विचार किया, तुरंत डिफेंड मत कीजिए। एक बार मैं दोनों के नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, एक हमारे इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष थे, इस मंदिर के नहीं किसी अन्य मंदिर के, और वहां के जीबीसी थे, ये अपने कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते थे प्रेसिडेंट, और जीबीसी नरम स्वभाव के थे, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट ने कुछ एक्शन लिया वहां पे टेंपल के अंदर, तो लोग बहुत हल्ला करने लगे कि ऐसा एक्शन कर दिया है ना। और बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, कोई अच्छा एक्शन लो तो फिर लोग सही एक्शन लेने वाले के प्रति अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, तो प्रेसिडेंट और जीबीसी का मीटिंग हुआ, तो जीबीसी ने उनको पक्ष रखा, देखो ऐसा 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 प्रति आपके प्रति लोग कह रहे हैं, तो सब कुछ बताया। तो उन्होंने बोला आपको कुछ कहना है अपने पक्ष के अंदर, आप अपना डिफेंड, डू यू हैव एनीथिंग टू डिफेंड? एंड ही सेड एनिमल्स डिफेंड, यू नो आई हैव नथिंग टू डिफेंड, लाइक दैट। सो आई विल नॉट चेंज माई स्टैंड लाइक दैट, आई कैन चेंज माई पोजिशन, एंड ही हैड टू गिव अप हिज पोजिशन लाइक दैट, यू नो। लेकिन उन्हें बोला कि नहीं, ये स्टैंड नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये स्टैंड सही है प्रभुपाद की संस्था के लिए, ये स्टैंड होना चाहिए स्टिल। सो मैं इसके प्रति को डिफेंड नहीं करूंगा कि मेरे से गलती हो गया, मैं नहीं, क्योंकि जानवर अपना बचाव करते हैं। तो जब भी कोई हमारे व्यक्तिगत आक्रमण हो कभी, तो उस समय रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपना बचाव नहीं करना चाहिए। सुन लो क्या होगा, वो अगला भी ठंडा हो जाएगा थोड़े समय के बाद, समय के बाद में कीजिएगा, कुछ समय रख लीजिए, नहीं तो क्या होगा, नहले पे दहला, फिर दहले पे एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और कुछ नहीं होने वाला। और ये तो हर किसी के लिए, ऐसा नहीं मंदिर के अंदर, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, जब भी ऐसा हो तो बेस्ट पॉलिसी डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। नॉट रिएक्टिंग इमीडिएट डज नॉट मीन एग्रीइंग टू इट। उस समय रिएक्ट करना, इसका रिएक्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं आप एग्री सहमत है उसके साथ में, इसका मतलब ये नहीं है। हो सकता है मतभेद हो, लेकिन डिसएग्रीमेंट शांति के समय सॉल्व किया जा सकता है, पहले शांति आ जाए फिर मतभेद को सॉल्व किया जाए। तो महाप्रभु ने यही किया, तुरंत रिएक्ट नहीं किया सबसे पहले, दैट इज हिज मैच्योरिटी। ही हर्ड पेशेंटली और विचार किया क्यों दामोदर पंडित ऐसा कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। एंड महाप्रभु दोष देख ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली सरल है और शुद्ध स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं और शुद्ध हैं, इनका मेरे प्रति शुद्ध प्रेम है। तो उन्होंने समझ लिया कि इसके अंदर कोई खोट नहीं है, लेकिन एक सरल रूप से देखा कि जो इनका प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये सरल स्वभाव के हैं, ही इज नॉट वेरी एक्सपर्ट, ही इज नॉट वेरी मेच्योर, यू नो, इन प्रेजेंटिंग हिज व्यू पॉइंट कि कैसे इसको किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम क्योंकि सरल है, तो सरल व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशन के अंदर ट्रेन करना भी मुश्किल होता है थोड़ा। तो महाप्रभु ने अगले दिन बुलाया, बोले सरल है तो ये मेरी बात मान लेंगे, इनका मेरे से प्रेम है। अगले दिन बुलाया, एक दिन हो गया, सब शांत हो गए, और क्या बोला, अभी भी कोई बचाव नहीं किया। एज अ लीडर महाप्रभु ने बहुत सिंपल सॉल्यूशन किया, अगर ये पास में रहेंगे तो क्या होगा, इनका आध्यात्मिक जीवन भी खतरे के अंदर है, ये बारंबार अपराध कर सकते हैं, और इनको देख के बाकी अन्य भक्त तो नहीं समझेंगे इनका मेरे पति प्रेम है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है मैं तो सहन कर लूं, लेकिन ये तो नहीं से बाकी भक्त देखेंगे कि क्या है, जब आए दिन महाप्रभु को भी ऐसे ही बोल देता है, तो लोग इनके प्रति अपराध करेंगे, है कि नहीं। और कुछ लोग मेरे को भी संदेशान कर सकते हैं, यू नो, और थोड़े समय बाद क्या होगा, पार्टीज फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, कोई बोलेगा दामोदर पंडित ठीक है महाप्रभु गलत है, कोई बोलेगा दामोदर पंडित गलत है महाप्रभु ठीक है, ऐसे पार्टी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो महाप्रभु बोला बेस्ट है दिस डिवोटी ड्यू रिस्पेक्ट, you know, without breaking the relationship, has to stay away from physical proximity, you know, अर्थात व्यक्तिगत संग से भक्त को थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं प्रेम कट जाना है, संबंध बना के रखना है, लेकिन वो घनिष्ठता को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब घनिष्ठता होगा तो फिर ये व्यवहार करेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। महाप्रभु लीडर अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितमृत के अंदर बहुत कम करेक्ट करते थे, क्योंकि अगर उनसे किसी ने करेक्शन पाया तो फिर उसके लिए कोई होप नहीं है। जैसे हनुमान जी जब और सब सागर में सेतु बांध रहे थे तो पत्थर पे राम लिखते थे, तो पत्थर तैरता था, तो भगवान राम भी देख के हैरान हो गए, बोले सब पत्थर तैर रहा है, ठीक है मैं भी एक पत्थर फेंकता हूं। तो जब महाभगवान राम ने एक पत्थर फेंका, क्या हो गया, वो डूब गया। तो हनुमान ये क्या है, तुम सब फेंकते हो तैरता है, मैं फेंकता हूं डूब जाता है। बोले भगवान जिसको आपने त्याग दिया उसका क्या बचा, वो वैसे ही डूब गया है, कि जिसको आपने फेंक दिया। तो सोचे किसी को अगर महाप्रभु से करेक्शन मिल गया तो उसके लिए कितना हार्ड ब्रेकिंग होगा, है कि नहीं, वो जी नहीं पाएगा कि महाप्रभु मेरे से अप्रसन्न है, ये छोटा हरिदास याद हुआ, ही हैड टू कमिट सुसाइड। तो महाप्रभु वेरी सेंसिटिव, वेरी मैच्योर कि नहीं 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 आई हैव टू डील सेंसिटिवली विद डिवोटीज, यू नो, क्योंकि यही वो भक्त हैं जिनके माध्यम के द्वारा आने वाले 10,000 साल तक वैष्णव धर्म जीवित रहेगा। तो मैं इनके साथ सेंसिटिवली मुझे डील करना पड़ेगा, इन्हीं भक्तों के साथ ही जो है ये मिशन आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है कि नहीं। और तीसरा महाप्रभु क्या बोला, तो उनको दूर भेज दिया ताकि फैमिलियरिटी ना हो, मेटीरियल फैमिलियरिटी। प्रभुपाद एक मेरे पास इंग्लिश वाला बुक नहीं है, देयर प्रभुपाद वन प्लेस स्प्लिट इन इंग्लिश, हाँ इस प्रकार से दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु कभी कभी ऐसे पद पर स्थित व्यक्ति बहिरंगा शक्ति तथा भौतिक कारणों से धृष्ट बन जाता है। इस तरह एक भक्त भूल से अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की आलोचना करने लगता है, किंतु इस तर्क के बाद कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, यू नो, भक्त को अपने गुरु के कार्यों से उद्वेलित होकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। भक्त को यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरु की आलोचना नहीं की जा सकती और सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यदि किसी अपूर्ण भक्त के अनुमान के अनुसार कोई त्रुटि भी दिखे तो भी भक्त में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि गुरु शराब की दुकान पर भी जाता है तो वह शराबी नहीं है, प्रत्युत वह किसी अन्य कार्य से वहां जाता है। एक बांग्ला कविता में कहा गया है, आई बिलीव दिस इज चैतन्य भागवत, यद्यपि नित्यानंद सुरा बढ़ी जाए तथापि यो हय नित्यानंद राय, भले नित्यानंद प्रभु की शराब की दुकान में प्रवेश करते दिखाई दिए हो कि तुम, मैं अपने इस विश्वास से विचलित नहीं होऊंगा कि नित्यानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक्चुअली ऐसा ही हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के पास एक भक्त शिकायत लेके आया, ये नित्यानंद को सिखाओ कुछ, क्या करता है ये, वेश्यालयों में जाता है, ये शराब खानों में जाता है, यू नो। और तब पूरा एक चैप्टर आता है, महाप्रभु बोलते हैं द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, यू नो, और तब महाप्रभु बोलते हैं कि वो शराब के खाने में भी जाए, वो शराब पिए भी, 10 स्त्रियों के साथ घूमे, तब भी ब्रह्मा और महेश के द्वारा वंदनीय है, यू नो। इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद की पोजिशन का एस्टैब्लिश करते हैं, जस्ट टू रिमूव द डाउट इन द हार्ट ऑफ दैट डिवोटी कि कितने कैसे नित्यानंद प्रभु महान है, एक्सटर्नल तो देखा नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत क्लोजली भक्त जो है अपने, और हम देखते हैं ऐसा बहुत बारी जो किसी महान आचार्य के या लीडर के जो निकटतम लोग होते हैं ना, तो वो थोड़े ऐसा एरोगेंट हो जाते हैं, इम्प्यूडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो सत्कार लीडर को मिलता है वही सत्कार उनको भी मिलता है कि नहीं। जैसे प्रेजिडेंट है और उसका सेक्रेटरी होगा तो उसको भी बहुत लोग पूछते हैं, ज्यादा लोग प्रेजिडेंट है उसी को पूछते हैं, है कि नहीं, बोला आपका सिफारिश है तो आप लगाइए कुछ। तो ऐसे जो है ऐसा हम बहुत बड़ी देखते हैं, प्रभुपाद जी के जन्म में देखते हैं, प्रभुपाद को हमेशा कंसर्न होता था कि ये जो लोग है ना मेरे आसपास में, ये मेरी पोजीशन को डिराइड ना करें। लाइक प्रभुपाद वेरी कंसर्न एंड केयरफुल, नॉट प्रभुपाद कंसर्न अबाउट हिज पोजीशन, बट प्रभुपाद जानते थे कि ऐसा करने से कृष्ण भावना संस्था का भविष्य में नुकसान होगा, लाइक दैट। और जैसे कि अग्निदेव प्रभु आए थे और कथा बता रहे थे कि प्रभुपाद बहुत सतर्क थे कि उनके किताबों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रांसलेटर एडिटर्स कुछ को चेंज कर देते थे और प्रभुपाद बहुत गर्म होते थे कि नहीं, डोंट मेक चेंज, दिस इज अ प्रॉब्लम विद यू आई एम वेस्टर्नर्स, यू वांट टू चेंज एवरीथिंग। प्रभुपाद बारंबार ये बोलते थे कि आप चेंज करना चाहते हो हर चीजें, और प्रभुपाद कहते नो, कृष्णा हैज डिक्टेटेड इन दिस बुक्स, डोंट चेंज, बारंबार प्रभुपाद ऐसा बोलते थे। और प्रभुपाद के जैसे एक समय ऐसा भी हुआ कि खाली एक बुक पे था तो ये लिखा था एसी भक्ति वेदांत, फाउंडर आचार्य गायब था, डिवाइन ग्रेस था, प्रभुपाद गायब था, एंड इमीडिएटली प्रभुपाद बिकेम वेरी कंसर्न्ड कि दिस अ थ्रेट टू इस्कॉन, दिस अ कॉन्स्पिरेसी ये इस्कॉन के अंदर जो है। और एक बार प्रभुपाद ने आई थिंक ब्रह्मानंद प्रभु को बुलाया और उनको बोले आई क्विट दिस मूवमेंट, तो ब्रह्मानंद प्रभु झटका लगा, यू प्रभुपाद यू आर द मूवमेंट, यू नो यू आर दिस मूवमेंट, लाइक दैट कि आप ही आंदोलन है, बोले नहीं आई एम क्विटिंग दिस मूवमेंट, उनको समझा नहीं, लाइक दैट। और फिर बात ऐसे कुछ आई गई हो गई, बाद में फिर प्रभुपाद ब्रह्मानंद प्रभु उनको कहीं लेके गए, जा गेट खोला तो ब्रह्मानंद प्रभु खड़े थे, प्रभुपाद ने बोला ब्रह्मानंद स्वामी, तो उनको समझ नहीं आया प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला, फिर कुछ दिन बाद संन्यास दे दिया। फिर ब्रह्मानंद प्रभु लिख रहे हैं उनके अंदर कि प्रभुपाद ने मुझे संन्यास क्यों दिया, मेरे को बाद में समझ आया, क्योंकि मैं और मेरा भाई गर्ग मुनि प्रभु, हम दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी था, तो प्रैक्टिकली इस्कॉन का संचालन का बहुत सारा ऐसा लिख रहे खुद ही अपनी किताब के अंदर कि जो है मैं उसको नियंत्रण करना चाहता था। तो प्रभुपाद बहुत बोले नहीं उनको, संन्यास दे दिया, बोले अभी ट्रैवल करो, यू नो, फ्रॉम सच अ बिग कंट्रोलर टू कंप्लीट पॉपर, यू नो, बेगर, और बोले अभी जाके सदा भ्रमण करो, एंड देन यू रियलाइज प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल वे ऑफ वर्किंग इट आउट, लग गया फिर कैसे प्रभुपाद ने सॉर्ट आउट किया इस प्रकार चीजों को। ऐसे बहुत सारी जगह पे प्रभुपाद ने जो है, जब प्रभुपाद वृंदावन में गुरुकुल बिल्डिंग बना तो सबने डिसाइड कर रखा था ये रूम जनरल मैनेजर का, ये चेयरमैन का, ये प्रिंसिपल का, ये वाइस प्रिंसिपल का, ये उसका, ये उसका। प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे हैं, सबको बता रहे थे प्रभुपाद ये इसका रूम होगा, इसका रूम होगा। प्रभुपाद सेट वेयर आर द स्टूडेंट्स, पहले 500 स्टूडेंट तो लेके आओ उसके बाद रूम देना है ना, उसके बाद रूम बांटना सब लग। तो प्रभुपाद ने जो है ही न्यू, तभी जब अपने जीवी चीज को बहुत बार बोलते थे यू शुड डू एज आई एम डूइंग, यू नो डोंट सिट एट वन प्लेस एंड मैनेज, ट्रैवल प्रीच एंड मैनेज लाइक दैट, प्रचार करो ट्रैवल करो, क्योंकि एक जगह पर रहने से व्यक्ति के अंदर नियंत्रण की भावना आ जाती है, तो इसलिए ट्रैवल करो बस लाइक दैट। तो व्यक्ति उससे जो है उसके अंदर वैराग्य की भावना भी आती है, नहीं तो एक जगह बोल के सोचते आहा उसको आसक्ति होने लगती है इस प्रकार से। तो जो है इसलिए महाप्रभु ने उनको उनके स्वभाव को देखते हुए, उनके स्वभाव पे, दामोदर पंडित के स्वभाव पे आघात नहीं किया कि अरे क्या आप ऐसे ही बोलते रहते हो, आपके बोलने की तमीज नहीं है, कुछ भी बोल देते हो, ये है वो है। बोले हम नवदीप जाओ, और वहां पे जाके जो है महाप्रभु को भी मालूम था कुछ ना कुछ लोग तो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं कलयुग है, तो दामोदर पंडित जो फर्स्ट क्लास मैनेजर है जो सबको बराबर रखेंगे और सबका रिस्पेक्ट भी है, तो चाहे भय के कारण लेकिन प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। तो ऐसे लोग होने चाहिए। महाप्रभु वॉज लाइक अ मदर, मदरली लव देंगे सबको और सब उनसे प्रेम करते थे, एंड एवरीबडी न्यू चैतन्य महाप्रभु कृष्णा, एंड इस एज अ डिवोटिव जब देखते थे तो वो ये देखते थे महाप्रभु कितना ज्यादा कृष्ण से आसक्त है। एक्चुअली दे वर वंडर स्ट्रक विद महाप्रभु, दे हैड अ लव फॉर चैतन्य महाप्रभु, यू नो, और महाप्रभु बड़े प्रेम पूरा डीलिंग करते थे, लेकिन जहां पे प्रैक्टिकल मैनेजमेंट करना है वहां कुछ मैनेजर्स को लगा के रखते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और इधर बंगाल भेज दे दामोदर पंडित को, उधर सरू दामोदर गोस्वामी थे, बराबर सबको वो हाँ टेक केयर रखते थे कि कोई महाप्रभु डिस्टर्ब भी ना करे और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे एक्सेट्रा। तो ये एक एस्पेक्ट है हमारे जीवन के अंदर कि प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद के मिशन के प्रति प्रेम का हमारा जो अभिव्यक्ति होता है वो हो सकता है मेच्योरिटी के साथ, जब हम उनके सारे मिशनरीज के साथ प्रेम करें और ट्रस्टवर्दी वातावरण बनाए। एक समुदाय मंदिर तो बन सकता है ईंट पत्थर रोड़ा और रोड़ी और रेते का, चाहे सीमेंट का लोहे का, लेकिन असली मंदिर है जहां पे भक्तों के विश्वास पूर्ण संबंध का जो है और वैष्णव सदाचार के फाइबर से जब मंदिर बना हो इस प्रकार से, यू नो दैट्स व्हाट महाप्रभु इज टीचिंग टू हिज पास्ट टाइम्स आल्सो, कि कैसे इश्यूज को एस्केलेट ना किया जाए, यू नो बात का बतंगा ना बनाया जाए, राई का पहाड़ ना बनाया जाए, लेकिन एक कृष्ण भावना मृत को रखते को सेंटर में रखते हुए, को फोरमोस्ट रखते हुए इनके साथ डील किया जाए, क्योंकि कलियुग है, गलत फहमियां तो होगी ही होंगी, यू नो गलतियां होंगी ही होंगी। तो जो है यू नो, तो महाप्रभु ने भी दामोदर पंडित की गलतियों का ना देखे, उनकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया और प्रॉपरली उन्हें एंगेज किया। तो इस प्रकार से हम गौर पूर्णिमा पे एक महाप्रभु की आचार्य लीला से सीख सकते हैं। आगे भी और बहुत सारे पास टाइम है जहां पे कुछ कुछ गलत फहमियां होती हैं और कुछ के पास स्टैंड ले जाते हैं, तो हम इनसे ये कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए व्यवहारिक हो। अभी 2-3 मिनट हैं, किसी भक्तों का प्रश्न है, कुछ कमेंट है, टिप्पणी है, तो यार मोस्ट
धन्यवाद। तो जैसे आपने यहाँ पर वर्णन किया, इसमें मेरे प्रश्न तो कई सारे उठ रहे थे, बड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि किस प्रकार से महाप्रभु ने रिएक्ट किया। तो हम देखते हैं कि महाप्रभु उस समय उस पोजीशन पे थे, एक बार देखने से थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है कि अगर उन्हें फीडबैक दिया तो जो उनका एक्चुअल गलती था उसको पिन पॉइंट, उसको करेक्ट करने के बजाय उन्होंने अपने से दूर कर दिया। ऑफकोर्स उनके अलग कारण थे कि शायद फैमिलैरिटी भी है, परंतु हो सकता है वो वहां जाकर भी वही गलती दोबारा करें, सच्ची माता को फिर फीडबैक देने लग जाए या कुछ भी इस प्रकार से। और दूसरा कि चैतन्य महाप्रभु उस पोजीशन पे थे कि वो स्टैंड ले सकते थे। अभी हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखें तो कब बहुत बार हम ऐसे पोजीशन पे नहीं होते कि भक्त को कहें कि आप किसी और जगह चले जाओ, हमने एक ही जगह पर रहना है। तो जब मेटीरियल फैमिलैरिटी हो तो विदाउट फिजिकल डिस्टेंस कोई और तरीका है उसको टैकल करने का।
सो टू पॉइंट्स, वन इज कि दामोदर पंडित वो गलती वहां पे दो नहीं करेंगे एक्चुअली, और सेकंड पॉइंट कि हमारे लिए व्यवहारिक हम उस पोजीशन में नहीं है, श्री महाप्रभु उनको दूर नहीं किया, महाप्रभु वेरी प्रैक्टिकली डेल्ट विद हिम कि उनको उनके स्ट्रेंथ के अनुसार यूटिलाइज किया। उनको मालूम है ये स्वभाव है उनका, ये सरल स्वभाव के हैं, इट्स नॉट ही इज एरोगेंट। उनको किसी भक्त में जो कोई मलाइस नहीं था हृदय के अंदर, वो तीनों गुणों से प्रेरित होकर नहीं करते थे। दामोदर पंडित हैं तो महाप्रभु उनको अप्रिशिएट ही कर रहे थे, लेकिन देखा वेयर कैन बी बेस्ट फिट इन, उनकी बेस्ट पोजिशन कहाँ पे है, तो बोला नवदीप में जाते हैं, इधर तो मैं भी हूँ और सरू दामोदर भी है, तो थोड़ा लेवल रहेगा इधर, लेकिन बंगाल में है तो वहां जाएंगे। एक्चुअली इट्स अ नाइस क्वेश्चन व्हाट यू टोल्ड मी। महाप्रभु क्या करते थे बहुत बारी, जब भी किसी भक्त ने थोड़ा बहुत मलाइस देखेंगे, कमी देखेंगे या भक्तों में, तो महाप्रभु कुछ नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। महाप्रभु एक चीज करते थे, बस अपने भक्तों का गुणगान करते थे, बोलेंगे देखो स्वरूप दामोदर से मैंने ये सीखा, नित्यानंद से ये सीखा, अद्वैताचार्य से ये सीखा, आचार्य ने ये सीखा मैंने। वो भक्त देखता रहता अच्छा, अगर मान लीजिए भागवत स्पीकर आए कल और यहां पे बैठ के एक एक भक्त का गुणगान करने लगे दो दो मिनट, तो क्या होगा? मेरे को पता नहीं था मेरे बाजू वाला कौन है यार, बिकॉज जैसे रूप गोस्वामी साधन गोस्वामी आए तो बहुत कम लोग नहीं जानते जगन्नाथपुरी के अंदर, लेकिन महाप्रभु पूरा सभा में बैठा करते ये रूप है, ये सनातन गोस्वामी है, और ऐसा पूरा उनका गुणगान करते थे टू क्रिएट द गुड फीलिंग्स इन द हार्ट ऑफ द डिवोटीज। तो महाप्रभु उनको बेस्ट प्लेस किया वहां पे, क्योंकि तीनों गुण से प्रेरित नहीं होते थे, और वहां जाएंगे तो करेक्ट भी करेंगे तो एकदम बाकी पार्षद मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और मेरे प्रति ऑफेंस से ज्यादा वो कम है ऑफेंस, और ये ऑफेंस करते भी नहीं थे, इनका तो प्रेम था खाली। और रही बात सच्ची माता की प्रति, तो महाप्रभु ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल संदेश देके भेजा था, जो मैंने कि 30 अध्याय के नाते वो सच्ची माता के लिए ही भेजा था, कि किस प्रकार से सच्ची माता जब भोग लगाती है तो मैं उनके आंगन रोज जाता हूं और पाता हूं, फिर माघ संक्रांति के एपिसोड को मिक्स करेंगे, तो फॉर श्योर दामोदर पंडित विल नेवर मेक मिस्टेक अगेंस्ट सच्ची माता। अगर पर्टिकुलरली आप बोलेंगे तो ही विल नेवर ऑफेंड सच्ची माता, क्योंकि मालूम है ये महाप्रभु जगह इन्हीं के संदेश है, और महाप्रभु ने बोला मुझे केयर करने के लिए प्रोटेक्ट। एज रिगार्ड्स टू अवर स्टैंड, बहुत अच्छा है, उस पोजीशन में नहीं है, इट्स वेरी सेफ फॉर अस नजर। और एंड देखिए महाप्रभु की पोजीशन इवन एज अ कम्युनिटी लीडर इज वेरी स्पेशल इन जगन्नाथपुरी, क्योंकि उनका इर्द गिर्द सारा समुदाय था बेसिकली, लाइक दैट। बहुत लोग बोलते भी थे हम जगन्नाथ को नहीं जानते, हम जानते हैं आप कौन, वी डोंट नो जगन्नाथ, लाइक दैट, बट वी नो यू। तो भक्तों के माध्यम से ही व्यक्ति गुरु परंपरा को जान सकता है। जैसे मंदिर में आते हैं तो लोग क्या बोलेंगे, हमने प्रभुपाद को नहीं देखा है, षड गोस्वामी को नहीं देखा है, लेकिन आप सबको देख रहे हैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है कि नहीं? तो द पॉइंट यू आर टेलिंग इज इन वन सेंस इट्स वेरी गुड, एंड इट्स देयर व्हेन वी हैव सच अ लव फॉर अवर सुपीरियर और अवर सबॉर्डिनेट्स हैव दैट लव फॉर अस, देन देयर इज अ पॉइंट, यू नो, या तो हम उस लीडरशिप पोजिशन पे हो और जहां पे भक्तों का हमारे प्रति ऐसा प्रेम हो, तब ये एप्लीकेबल होगा वो केस, इधर नॉट, बट इफ नॉट, बट स्टिल द बेस्ट वे इज टू एजुकेट एंड ट्रेन डिवोटीज एंड ट्रेन अवर सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। सबसे अच्छा है शास्त्र में वहां शिक्षा ली जाए कैसे भक्तों के बीच में आध्यात्मिक संबंध होने चाहिए, रादर देन मटीरियल, दैट इज ओनली वे वी कैन ओवरकम मटीरियल फैमिलियरिटी, इधर नॉट, एंड स्टिल इफ रिक्वायर्ड बेटर वी डू सम सेपरेशन फॉर द सम टाइम, दैट सॉल्यूशन वी डू, कम से कुछ नहीं तो सेवा दूर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यू नो, अब ये तो नहीं बोल सकते कि आप दिल्ली में हो तो आप दूसरा व्यक्ति विदेश चले जाए विदा होना, कैसा तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी डू सम सेपरेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, यू नो, ताकि कम से कम कंफ्लिक्ट्स आए टाइमिंग के लिए, ताकि जो हीट है थोड़ी कम हो जाए, एंड देन वी रिकंसाइल टू द डिग्री वी कैन पॉसिबल।
महाप्रभु ने छोड़ दिया हमसे बात करना बच्चे से?
नहीं 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 नहीं, ये क्या बोला उन्होंने, आप नवदीप जाइए रेगुलरली आइए मुझे मिलने के लिए,
बच्चे से, हाँ बच्चे से मिलना,
that is not mentioned, I hope, he must have done so, I hope so, या दूर से करते होंगे, at least ना घनिष्ठता पूर्वक बंद कर दिया होगा, right, महाप्रभु भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, he is आचार्य है, तो जैसे रामचंद्र ने सीता देवी को बैनिश किया, तो hope so किया,
इसकी कोई प्रिजी लाइन है कि एक हो गया पब्लिक कंसिडरेशन, कि पब्लिक ऐसा चाह रही है, पब्लिक को पोजिशन में, एक हो गया उनका जो खुद स्वाभाविक एक वो मिल रहे थे, तो कोई ऐसा एक लाइन है कि कहां पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए,
Caesar's wife should be above suspicion, as Prabhupada told him. So, at least yad yad atrati sveshta tatta deve tarodhano sayat pramanam kurute lokasadanu vartate. तीसरे स्कंद के अंदर जहाँ पे जय विजय का प्रसंग आता है, और जब जय विजय ने रोक दिया चारों कुमारों को, तो प्रभुपाद वहां के तात्पर्य में लिख रहे हैं, एनी मिस्टेक और आई थिंक ऑफेंस डन बाय अ डिवोटी इज अ स्कार ऑन द लॉर्ड्स बॉडी. तो किसी भक्त के द्वारा किया गया कोई भी अपराध भगवान के शरीर पे किया गया एक जख्म है. तो इसकी पब्लिक ओपिनियन के पीछे लाइन क्या है, आप भगवान के भक्त हैं तो भक्त को तो एज मच एज पॉसिबल He should, क्योंकि वो जो करेगा तो लोग बोलेंगे देखो इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं. सो एज डिवोटीज एटलीस्ट आई कैन से हमारे प्रति तो एज प्रोपर सर माई डिवोट्स आर बेस्ट जेंटलमैन. सो दिस प्रिंसिपल आई कैन टेल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रॉपरली रिप्रेजेंट श्रील प्रभुपाद एंड रिप्रेजेंट गुरु परंपरा. जितना आइडियल एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सके करना चाहिए. और रही बात लाइन एटलीस्ट इन पब्लिक, you know, and there should be some home situation where we can intimately deal, you know. So aisa situation hona chahiye kyunki is prakar se, so that our personal want and need is taken care, you know. That's my understanding. Yes sir.
Thank you. I don't think is topic pe itna justice maine kisi ko karte nahi sir, all credits to you. Just one iske andar ek jo aapne एक सब्जेक्ट छेड़ा था इसके अंदर, एंड आई कुड फिगर आउट इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिस एंड मैच्योरिटी. लाइक कई जगह पर आपने बोला कि लाइक रिक्वायर्ड सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी. सो एंड जाहिर ही बात है सब लोग पैदाइशी मैच्योर नहीं होते. सो हाउ टू गेट देयर, लाइक इज प्रैक्टिस हैज अ रोल टू प्ले, लाइक मोर देन प्रैक्टिस.
मैं जहाँ तक प्रश्न समझ पा रहा, रिपीट किया आप पूछे, जैसे मैं परिपक्वता के बारे में बात कर रहा था, तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट इट्स अंडरस्टूड, स्वाभाविक है कि हम परिपक्व नहीं होते, यू नो. हाँ, समय के साथ में परिपक्वता आती है. तो क्या परिपक्वता के लिए अभ्यास करना चाहिए या क्या अभ्यास?
हाँ, मतलब क्योंकि ये भी अपने अच्छा ये छेड़ दिया है, कई लोग इस तरीके से कहते हैं कि वक्त के साथ जो है परिपक्वता आ जाती है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, इंतजार करें?
हाँ हाँ, तो परिपक्वता के लिए टू थिंग्स विच आई अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज हियरिंग अबाउट मैच्योरिटी, व्हाट इज मैच्योरिटी एंड हाउ अ पर्सन एक्ट्स, हाउ अ मैच्योर पर्सन एक्ट्स. जैसे कृष्ण अर्जुन भी पूछ रहे हैं, सीत प्रज्ञा से का भाषा समाधि सस्य के शव सीत धीय किम प्रभाषित किमा सीत वज्रित किम, कि कैसे एक जो उस स्थिति में पहुंच सीत प्रज्ञा व्यक्ति आचरण कैसे करते हैं ये तो बताओ, ये सिद्धांत ठीक है. तो ऐसे व्यक्ति को देखना और सुनना, दिस इज वन थिंग, एक मैच्योर व्यक्ति इस परिस्थिति में कैसे एक्ट करते हैं. लाइक दैट, जब हरिदास ठाकुर को कोड़ा पड़ा तो कैसे एक्ट किया उन्होंने, अम्बरीश महाराज को जब किया तो कैसे एक्ट किया, जब किसी का निंदा चुगली हुआ तो कैसे एक्ट किया. तो वो टिपिकल उदाहरण मैच्योरिटी के कौन है, तो उनके बारे में सुनना, दिस इज द फर्स्ट. देन वी कैन एस्पायर फॉर इट एटलीस्ट, एटलीस्ट की अच्छा ये मेच्योरिटी, आई एम फार अवे फ्रॉम इट. एंड देन सेकेंड इज सीइंग मेरे और उसके कितना डिफरेंस है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चल सकता हूं. जंपिंग करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, कोई हमको एक थप्पड़ मारेगा हम बोलो दूसरा ही मारो, तो फिर बाद में जाके हम ही परेशान होंगे. जैसे प्रभु जी आए थे लेक्चर देते विपदा संतुता शाश्वत, ये प्रार्थना नए भक्त तो नहीं करेंगे, प्रभुपाद बोले ऑलरेडी देयर आर सो मेनी ट्रबल्स, व्हाई इनवाइट, व्हाई प्रे फॉर मोर, फिर इतने सारे तकलीफ ऑलरेडी है, आप और के लिए क्यों प्रार्थना करें, कुंती मारा नहीं कर सकते, उनका रियलाइजेशन है. हम लोग करेंगे तो कई भक्तों का अनुभव होगा, किया रहेगा प्रार्थना, बाद में बोला भगवान थोड़ा अंडू कर दो ये प्रार्थना, नहीं वी कैनॉट इमिटेट. तो हम ये देख सकते हैं कि ठीक है मेरे स्तर पर मैं क्या मेच्योरली एक्ट कर सकता हूँ. सो फॉर दैट इज रेगुलर हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडिंग श्री प्रभुपाद बुक्स और उन पर मनन करना बहुत आवश्यक है, ये श्रवण करके. और दूसरा यू नो रेगुलर लेवल ऑफ असेसमेंट फॉर अवर सेल्फ, कहीं पे हम कुछ समय निकाल कर शांति अपने व्यवहार का अवलोकन कर सकें, you know, निष्पक्ष रूप से कि हाँ मैंने कहाँ अच्छा किया, कहाँ मैं पहले से ग्रो किया और कहाँ मेरे में कमी रही, you know, दोनों करना चाहिए. खाली कमी कमी देखेंगे तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मैं बड़ा यूजलेस व्यक्ति हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, दिस टू प्रैक्टिस इज एटलीस्ट आई कैन से. स्पेशली हियरिंग अबाउट मैच्योरिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, तभी शास्त्र ऐसे लिखे गए हैं, नहीं तो एस्पायर नहीं करेंगे हम कभी भी. इंस्पिरेशन दैट्स वेरी एसेंशियल. थैंक यू. जिन भक्तों जाना मैं समझ आता हूँ अभी, आई डू नॉट डू जस्टिस, आई शुड हैव कंप्लीटेड बिफोर टाइम टू गिव दिस. आप जिन भक्तों को प्रस्थान करना और प्रसाद लेना आप कृपा करके आगे बढ़ सकते.
हरे कृष्ण. थैंक यू. आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, मगर हमारे मिशन में जैसे कि आपने कहे चैतन्य महापुरुष स्वतंत्र डिसीजन ले सकते, वो भगवान है, उन्होंने सिचुएशन को डील करने के लिए तुरंत एक्शन नहीं लिया. इन मिशन में एडमिनिस्ट्रेटिंग और बहुत सारा जो भक्त के संरक्षण देखभाल करने के लिए और अपने को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तर है, कई डिपार्ट है, कोई उत्तम लीडर है, कोई मध्यम लीडर है, कोई कनिष्ठ लीडर है, ऐसे बहुत सारा है लीडिंग करते हैं. मगर एक उत्तम लीडर जो है वो जिस तरह से लीडिंग कर सकते हैं वो मध्यम नहीं कर सकते, कनिष्ठ भी नहीं कर सकते. ये सिचुएशन में ऐसा बहुत सारा परिस्थितियां आ जाती हैं, तो जो उत्तम जो फर्स्ट क्लास लीडर है वो इसको सोच करके अच्छी तरह से सोचने के बाद इनके डिसीजन लेते हैं. मगर जो कनिष्ठ लोग हैं जो ज्यादा डीलिंग करते हैं आम पब्लिक के अंदर में, उनकी क्या स्थितियां होगी, क्योंकि वो तो उसी तरह से तुरंत उसको तुरंत रिएक्ट कर देंगे. वो तो सोच साथ के ये नहीं भाई सोचेंगे बाद में करेंगे, ये नहीं कर सकते, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, तो उसको कैसे डील किया जाए फिर.
बिल्कुल ठीक बात है. न्यू फाइट मतलब न्यू एंड फाइट एवरीडे, न्यू फाइट लगे न्यू फाइट.
ज्यादा समस्या तो वहीं पर ही होता है क्या?
एक्चुअली हमने जब आपने बोला सो धन्यवाद, जो मैंने भक्तों से सुना है वरिष्ठ भक्तों से खाली वही मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया. उसमें मेरा तो कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट किया हुआ चोरी का माल है बस आके प्रेजेंट कर दिया इधर. लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हमने वरिष्ठ भक्तों जितना भी सुना है पढ़ा है वो ये है कि फिलहाल तो अभी हम देखा जाए तो हमारे आसपास जितने सब भक्त होंगे प्रारंभिक अवस्था में तो निश्चित रूप से वो उतने उन्नत नहीं होंगे, उन्नत चेतना में नहीं होंगे, स्वाभाविक सी बात है. लेकिन ऐसा ही बोला जाता है लीडर मतलब उसको तीनों गुणों से परे हो तो बेस्ट लीडर है, वही डील कर सकता है तीनों गुणों से. जो तीनों गुणों के अंदर फंसा हुआ है वो तो तीनों से डील भी नहीं कर सकता वो तो अपना गुण और उसका गुण वो फाइट वर्क करेगा. तो इसके लिए बेस्ट जो बताया जाता है वो ये है, कोई भी व्यक्ति अगर जिम्मेदारी की पोजिशन पे हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिज कनेक्टिविटी विद गुरु परंपरा एंड कृष्णा. कि यदि अलाउ कृष्णा टू एक्ट थ्रू हिम, अलाउ गुरु परंपरा टू एक्ट थ्रू हिम, अगर वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के अंदर है तो कैसे विशेषकर आध्यात्मिक रूप से कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है. और वो कैसे है, प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करके कैसे, कौन से विशेषकर विजिबल साधना लाइक दैट, जहां पे सुबह का कार्यक्रम और प्रभुपाद के शास्त्रों का अध्ययन और व्यावहारिक सेवा, ये किया तो क्या होगा, कृष्णा विल एम्पावर अस, कृष्ण विल अलाउ कृष्णा टू डू थ्रू अस. ये तो क्या होता है, कृष्ण तो करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट तो ब्लॉक कर देते हैं यहां पे आके. तो कृष्ण बोलते हैं ऐसा करो लेकिन अपना गुण बीच में आता है और हमें कुछ और कर देते हैं. सो इफ दैट वी कैन डू विल बी मोर ट्रांसपेरेंट बाय मीडिया. एटलीस्ट उसमें एक चीज होगा, अगर हम गलती भी करेंगे ना तो कृष्ण हमको रियलाइज कराएंगे कि हमने गलत रिएक्ट किया. नहीं तो क्या होता है, जब कृष्ण से कनेक्टिविटी खत्म हो गया तो गलती किया, गलती का दूसरा पॉइंट आता है डिफेंस लाइक दैट, इट बिकम्स वर्स्ट लाइक दैट. गलतियां तो होगी होगी लेकिन कनिष्ठ स्तर पे गलतियां होगी, गलतियों का इश्यू बनाया जाएगा और डिफेंस किया जाएगा. जब आप उन्नत हो जाएंगे तो गलतियां स्वीकार की जाएगी, क्षमा मांगी जाएगी और क्षमा किया जाएगा. यही डिफरेंस है, गलतियां खत्म नहीं होंगी वहां पर, भक्तों की क्षमाशीलता बढ़ेगी. दैट इज एडवांस सोसाइटी ऑफ एडवांस डिवोटीज.
इस कथा में भी ऐसे आपके जो आपने जो बताया वो संदेश मिला है, चैतन्य महाप्रभु जब दामोदर पंडित को भेज दिया उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, वो भी समझ गए, क्योंकि उनमें से एक शिक्षा हमें ये प्राप्त तो होता है कि जब ऐसी स्थिति है तो उसके अनुसार चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा चेंज कर दी.
yes.
उनको विद्वेष भावना से नहीं किया
कुछ.
तो ये तो ठीक है, मगर आमतौर पर हम लोग को प्रॉब्लम आ जाता है कि जब
एक्चुअली प्रभु जी हमको चूज करना पड़ेगा हम किस समुदाय में रहना चाहते हैं और कैसा अपने समुदाय को बनाना चाहते हैं. ईच वन ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटमॉस्फेयर वी क्रिएट. क्या हम कनिष्ठ वातावरण में या उन्नत वातावरण में रहना चाहते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है. ईच वन ऑफ अस कंट्रीब्यूट टू द इथोस, टू द इकोसिस्टम. जैसी चेतना हमारे विचार में होगी वो पूरे वातावरण में फैलती है. इट्स अवर चॉइस, वी वॉन्ट टू डेवलप इन टू सोसाइटी ऑफ कनिष्ठास और फ्रॉम कनिष्ठा टू मध्यम.
हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मेरा प्रश्न ये है कि आप इसमें परफेक्ट पढ़े तो एक लाइन मुझे ऐसी सुनाई दी कि इसमें वो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में दामोदर पंडित हैं, और फिर बात बता रहे हैं कि कभी कभी इस प्रकार से उन्नत भक्त भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है. तो जैसे भगवान तो गीता में बताते हैं माम चो विचारण भक्ति योगिन सेवते सगुणम समति ध्यान ब्रह्म भूय कल्पते, तो फिर इस प्रकार से बहिरंगा शक्ति का आक्रमण, मतलब ये वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में है तो कैसे इसे समझा जाए.
दामोदर पंडित का कोई फॉल डाउन नहीं हुआ यहाँ पे. आपकी चेत आपने कौन माम चो योगिचारण भक्ति योग सगुण ओके ओके माम चो योगी योगिचारण भक्ति योगे न सगुण समुदित. नहीं तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु के एक और पार्षद थे, वो तो पूरा ही बहिरंगा शक्ति प्रभाव में आ गए. कौन? काल कृष्णदास. और उसके अलावा दूसरे सेक्रेटरी गए वृंदावन, वो भी बोले देखो कृष्ण का अवतार है बलभद्र भट्टाचार्य. तो जब भी आप क्लोज रहते हैं तो ये प्रैक्टिकल टीचिंग है. तभी कई सन्यासी हैं थोड़े थोड़े टाइम में सेक्रेटरी चेंज करते रहते हैं, वो नहीं तो उनको पता है फेमिलियर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वो लोग. ऐसे होता है, प्रभुपाद भी अपना सेक्रेटरी चेंज करते रहते हैं टाइम भी. कभी कभी जाते हैं स्तर पर अच्छा सेवा करता है.
तो एक्चुअली जो भगवान उनके पार्षदों की जो संबंध है आपस में व्यवहार है वो विशुद्ध स्तर पर है. हम ये नहीं कहेंगे कि तीन गुणों का प्रभाव होता है.
नो, महाप्रभुज लीला इन ऑल लीला स्पेशली आचार्य लीला डजंट एक्ट एज गॉड, यू नो ही नॉर्मली एक्ट एज अ डिवोटी इन द जगन्नाथपुरी स्पेशली इज फुल इन द मूड ऑफ अ डिवोटी लाइक दैट. तो वहां पे वो कहीं का भगवत्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने, अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि महाप्रभु सब जानते हैं, लेकिन और ये एक स्पेशल डीज आर दी. इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यही लिखा है कि मैं सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पास्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और महाप्रभु के गूढ़ तत्व कोई नहीं जान सकता, मैं सिर्फ एक्सटर्नल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो हुआ है रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस. इसमें मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा. और आप देखें प्रभुपाद ने भी ज्यादा तात्पर्य नहीं लिखे उनके ऊपर, बहुत मिनिमम मिनिमम कई कई कमेंट लिखे हैं. एंड दामोदर पंडित वॉज इम्प्यूडेंट, यू नो ही एक्टेड राधर कुछ से नॉट इम्प्यूडेंट एक्टेड इम्प्यूडेंटली, दृष्टतापूर्वक आचरण किया उन्होंने. तो प्रभाव लिख रहे हैं कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे बड़े लोगों के आसपास रहने लोग दुष्टता पूर्वक हो जाते हैं बहिरंग शक्ति के प्रभाव से लाइक दैट. और प्रभाव ये भी लिख रहे हैं कि उन्होंने पूर्ण सहज प्रेम के कारण किया महाप्रभु के प्रति, है कि नहीं. लेकिन फिर भी भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये भी लिख रहे हैं. सो राइटिंग ऑल द थिंग्स, यू नो यू कैन नॉट टेक वन साइड एंड एक्सट्रापोलेटेड. इज इट ओके? जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री दामोदर पंडित की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि.